हर युग में एक ऐसी शख्सियत रही है जिसने वह बुनियादी ढांचा खड़ा किया जिस पर बाकी पूरी सदी चली और जो लगभग एक उपपरिणाम के तौर पर अपने समय का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। तीन आदमी तीन सदियों में फैले हुए, यही कहानी कहते हैं। एक फर व्यापारी जो आखिर में मैनहट्टन का मालिक बना, एक तेल रिफाइनर जिसने पूरे उद्योग को व्यवस्थित किया, और एक रॉकेट निर्माता जो अब आने वाले 100 साल की कीमत तय कर रहा है। दौलत का पैमाना बेहद अलग है, मगर जिस पैटर्न ने इन्हें पैदा किया वह लगभग एक जैसा है। हर्षल दसानी द्वारा। जॉन जैकब एस्टर 1763 1848 उदास स्माइली। पहला अमेरिकी करोड़पति जॉन जैकब एस्टर 1784 में न्यूयॉर्क पहुंचे। 21 साल का एक कंगाल जर्मन प्रवासी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बेचने के लिए कुछ बांसुरियां साथ लाया था। उसने अमेरिकन फर कंपनी को देश की पहली बड़ी व्यापारिक मोनोपोली में बदल दिया। चीन को फर भेजे और बदले में चाय और रेशम लाया, और प्रशांत तट पर एस्टोरिया नाम की व्यापारिक चौकी तक बसाई। फिर शिखर पहचानने की एक व्यापारी की सहज समझ के साथ उसने 1830 के दशक में, ठीक उसी वक्त जब यह कारोबार चरम पर था, फर से निकलकर सब कुछ मैनहट्टन की जमीन में लगा दिया। वे खेत और जंगल खरीदे जो आगे चलकर मिडटाउन बने। 1848 में जब उनकी मृत्यु हुई, वह अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी लगभग 2 करोड़ डॉलर की संपत्ति कथित तौर पर अमेरिकी खजाने की नकदी से भी बड़ी थी। मृत्युशया पर उनकी सलाह एक ही वाक्य की थी, मैनहट्टन द्वीप की जमीन का हर फुट खरीद लो। जॉन डी रॉकफेलर 1839-1937 उदास स्माइली। पहला अरबपति जॉन डी रॉकफेलर ने तेल खोजा नहीं, उन्होंने उसे व्यवस्थित किया। 1863 में क्लीवलैंड की अपनी पहली रिफाइनरी से ही उन्हें लागत का जुनून था। उन्होंने 1 गैलन केरोसिन को रिफाइन करने की कीमत लगभग 3 सेंट से घटाकर 1 की ओर पहुंचाई, और दक्षता तथा रेलवे से कड़ी सौदेबाजी वाली छूटों के दम पर एक एक प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराकर अपने में समाहित करते गए। 1880 के दशक की शुरुआत तक उनकी स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिकी रिफाइनिंग के लगभग 90% पर काबिज थी। 1911 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोड़ा, एक्सॉन मोबिल शेवरॉन और अमोको के पूर्वजों में, तो टुकड़े साथ रहने के बजाय अलग होकर ज्यादा कीमती साबित हुए, और इस विभाजन ने उन्हें और भी अमीर बना दिया। 77 की उम्र में 1916 में उन्होंने 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया, एक ऐसी दौलत जो किसी भी आधुनिक अरबपति की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कहीं बड़े हिस्से के बराबर थी। और फिर अपने आखिरी 21 साल उसका ज्यादातर हिस्सा दान करने में बिताए। शिकागो विश्वविद्यालय, रॉकफेलर विश्वविद्यालय और रॉकफेलर फाउंडेशन उसी दूसरे अध्याय की देन है। एलन मस्क 1971 उदास स्माइली। पहला खरबपति एलन मस्क ने अपनी पहली बड़ी कमाई सॉफ्टवेयर में की। 2002 में जब ईबे ने पेपल खरीदा तो लगभग 18 करोड़ डॉलर, और फिर उसके साथ वह किया जो किसी की सोच में न आए। उन्होंने वह पैसा रॉकेट और इलेक्ट्रिक कारों में झोंक दिया, उस वक्त जब दोनों दिवालिया होने के भरोसेमंद रास्ते लगते थे। स्पेसएक्स ने पुनः इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों के जरिए कक्षा तक पहुंचने की लागत लगभग 90% घटा दी। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाया और कुछ समय के लिए इतिहास की सबसे कीमती कार कंपनी बन गई। इनके ऊपर उन्होंने XAI, न्यूरलिंक, द बोरिंग कंपनी और टेस्ला एनर्जी को जोड़ा। हर एक किसी अलग कठिन भौतिक समस्या पर हमला करते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मस्तिष्क इंटरफेस, सुरंग खोदना, ऊर्जा भंडारण। 2026 में जब स्पेसएक्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग और उनकी बाकी हिस्सेदारियों का बाजार मूल्यांकन हुआ, वह दुनिया के पहले खरबपति बन गए। वह खरब असल में कभी कोई शेयर भाव था ही नहीं, वह एक ही इंसान का योग था जो एक साथ आने वाली सदी की लगभग हर बुनियादी समस्या पर दाव लगा रहा था। वह पैटर्न सदियों को हटा दीजिए तो तीनों कहानियां एक ही लय में गूंजती हैं। हर आदमी ने वह भौतिक परत खड़ी की जिस पर अगला युग टिकने वाला था, पहले जमीन, फिर ऊर्जा और फिर खुद अंतरिक्ष तक पहुंच। हर एक ने जुनून की हद तक अनुशासन के साथ दोबारा निवेश किया, महज मुनाफा भुनाकर निकल जाने से इनकार करते हुए। हर एक अपने दौर में कुछ ऐसा कर रहा था जिसे स्थापित दुनिया लापरवाह या बेतुका कहकर खारिज कर रही थी, और हर एक ने शिखर पर या अंत के करीब अपनी दौलत दान करने या उसे पैसे से बड़ी किसी चीज पर खर्च करने की ओर रुख किया। दौलत तो उपउत्पाद थी, असली बात वह बुनियादी ढांचा था, और वह तीनों से ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। यह ब्लॉग केवल जानकारी और सामान्य रुचि के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है और न ही किसी कंपनी या प्रतिभूति के संबंध में कोई अनुशंसा। आंकड़े और तारीखें सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं। यह सामान्य जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं।